हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं पिछले अध्याय में आपने देखा कि उर्वशी, खुराना और दादी टीवी पर एक खबर देख रही थीं कि अस्पताल में मौजूद लड़की की मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। किसी और की लाश को झलक की लाश बताकर जला दिया गया था और उसका वीडियो मीडिया पर चल रहा था। ये देखकर दादी बहुत रो रही थीं, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि झलक के आने का मकसद पूरा हो चुका था और उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। वहीं रणविजय अनामिका से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। उसे पछतावा हो रहा था कि वो अनामिका की मदद नहीं कर पाया। दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने कमरे में झलक की यादों से परेशान था और उसने कमरे का नक्शा बदलने का आदेश दिया। वो जिम में जाकर झलक के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने खुद को समझाया कि झलक की मौत ने उसकी ज़िंदगी से एक बड़ा मकसद छीन लिया है, लेकिन वो उससे आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे बाद झलक को होश आया और उसने खुद को एक अनजान अस्पताल में पाया। उसे याद आया कि उसने जान देने की कोशिश की थी। अब आगे उस वक्त उसके दिल और दिमाग पर हर तरह का तनाव छाया हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है, किस हाल में है और उसकी ज़िंदगी अब किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब झलक को होश में आते ही डॉक्टर ने तुरंत ही मिस्टर दिग्विजय को इन्फॉर्म कर दिया था। दिग्विजय जी बिना देर किए झलक के पास आ गए थे। अपने सामने उन्हें देखकर झलक हैरान रह गई। उसे अच्छे से याद था कि वो उनसे मंदिर में मिली थी। झलक ने घबराते हुए तुरंत कहा, सर आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कहाँ लाया गया है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। झलक की बातें सुनकर दिग्विजय जी हल्का सा मुस्कुराए और नरम आवाज़ में बोले, रिलैक्स डियर, प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम्हें इस तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हैं। लेकिन तभी झलक ने गहरी सांस ली, अपना सिर पकड़ लिया और एक बार फिर पार्टी में जो कुछ हुआ था वो सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। किस तरह एक एक करके लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, उसके बारे में बातें बनाई थी। झलक खुद भी सिद्धार्थ खुराना के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इतनी बदतमीजी, इतनी बेइज्जती के बाद जिस तरह उसे ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया गया था, वो बात उसे अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ गई थी। अचानक उसकी आंखें भर आईं। वो दिग्विजय जी को देखकर बोली, देखिए आप कौन हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जाना होगा। वैसे भी मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर दिग्विजय जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि शायद तुम्हें हमारा चेहरा कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है, इसलिए तुम घबरा कर यहाँ से भागना चाहती हो। लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, तुम हमारी बेटी हो और आज के बाद तुम यहीं रहोगी। दिग्विजय जी ने जैसे ही ये बात सीधे शब्दों में कही, झलक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वैसे भी उसे अपना अतीत पूरी तरह याद नहीं था। भले ही उसकी जान बचाई गई थी और उसे बताया गया था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसका पिता है, लेकिन फिर भी वो भीतर से टूट चुकी थी। झलक ने खोए हुए अंदाज में कहा, अब मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई खास उम्मीद नहीं है। मुझे पता है कि मेरी मंजिल अब कहाँ है। उधर अनामिका, जो दिग्विजय जी और झलक की बातें चुपचाप सुन रही थी, मन ही मन कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। एक ही पल में झलक के साथ उसका रिश्ता बदल चुका था। वो अब सिर्फ उसकी दोस्त नहीं रही थी। हालांकि अनामिका अब भी झलक को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखती थी और उसके लिए उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। उसे पता था कि वो झलक के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसा दूसरों ने किया है। अनामिका ये भी जानती थी कि झलक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन झलक को ये एहसास भी होना ज़रूरी था कि जितना अन्याय उसके साथ हुआ है उससे कहीं ज़्यादा उसके पिता आरव मल्होत्रा के साथ हुआ है। जब तक झलक ये सच नहीं समझेगी, तब तक शायद वो पूरे सच पर यकीन भी नहीं कर पाएगी। ये सब सोचते हुए अनामिका ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, दादाजी इससे मैं बात करती हूँ, आप शांत हो जाइए। तभी झलक की नज़र दरवाजे पर खड़ी अनामिका पर पड़ी। उसे देखते ही झलक तुरंत खड़ी हो गई और अनामिका के पास जाकर बोली, अनामिका अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने देखा नहीं ये अंकल कौन है और ये मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने पर तुले हुए हैं। देखा ना अनामिका, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अब मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। आकांक्षा बिल्कुल ठीक कह रही थी, वैसे भी मैं एक पाप की निशानी हूँ, साथ ही साथ नाजायज हूँ। मेरा कोई खून खानदान नहीं है और मैं कोठे पर अपने आप को बेचने से बेहतर समझती हूँ कि अपनी जान दे दूँ। वैसे भी जब से मेरा जन्म हुआ है मैं हर किसी पर बोझ ही रही हूँ। कभी ओबेरॉय परिवार पर बोझ रही और फिर जिन लोगों ने मुझे पाला मैं उन पर बोझ बन गई, लेकिन अब नहीं, अब मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। झलक पूरी तरह से पागलों जैसी बातें कर रही थी, क्योंकि उसका दिल और दिमाग एक तरफ खुल चुका था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम आ जाएगा। आज तक उसने कभी अपने नाम के पीछे कोई सरनेम नहीं लगाया था, लेकिन आज उसे इस बात का मतलब अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि बिना सरनेम के लोगों को कितनी नीची नजरों से देखा जाता है, कितना उसके बारे में भला बुरा बोला जाता है। तभी अनामिका ने झलक को कंधे से पकड़ लिया और उसकी ओर देखकर बोली, झलक शांत हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी जिंदगी की ये नई शुरुआत है, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती। और मैं तो ऐसी झलक को जानती ही नहीं जो छोटी छोटी मामूली सी बातों पर हार मान ले। नहीं, तुम तो उन लोगों में से हो ही नहीं, झलक शांत हो जाओ। लेकिन तभी झलक पूरी तरह से चीखते हुए बोली, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं अनामिका, ऐसे कैसे शांत हो जाऊं, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मैं नहीं जीना चाहती। पहले तुमने मेरी जान जैसे तैसे बचा ली, लेकिन अब नहीं, अब तुम मेरी जान नहीं बचाओगी, तुम अब मेरे रास्ते में नहीं आओगी, और वैसे भी तुम अपना जो मकसद पूरा करना चाहती थी वो मकसद पूरा करो और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए, मैं किसी की जिंदगी में जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, अपनी वजह से किसी के भी खानदान पर बेइज्जती का दाग नहीं लगाना चाहती। और अनामिका तुम भी मुझसे दूर हो जाओ, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो कहीं तुम्हें भी कोई गलत न समझ ले, मेरे साथ जो कोई रहेगा उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, प्लीज अनामिका तुम अब मुझे अकेला छोड़ दो और जाने दो मुझे यहां से। झलक ने पूरी तरह टूटते हुए ये सब कहा, तभी अनामिका थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, शांत हो जाओ, तुम इस तरह से नहीं टूट सकती झलक, तुम इस तरह से नहीं टूट सकती, वैसे भी मैं जिस झलक को जानती हूँ वो बिंदास है, लड़ना जानती है अपने हक के लिए, वो किसी से नहीं डरती, तुम्हें हो क्या गया है झलक, आकांक्षा ने जानबूझकर तुम्हें तोड़ने के लिए इस तरह की बातें कही थी, तुम इस तरह से नहीं हार सकती, नहीं हार सकती। अब अनामिका की बातें सुनकर झलक चिल्लाकर बोली, वो मर चुकी है, सब लोगों ने मिलकर उसे मार दिया है, और अब एक जिंदा लाश को जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, इस जिंदा लाश को जीने का अब कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है, जाने दो मुझे, वैसे भी मैं नहीं जीना चाहती, और प्लीज तुम मुझे फिर से मत बचाना, मैं जानती हूँ कि तुम हॉस्पिटल में मुझे बचा चुकी हो, लेकिन अब और नहीं, अब तुम मुझे नहीं बचाओगी।
झलक एकदम दीवानों की तरह बातें कर रही थी, उसके दिल का दर्द अनामिका और दादाजी दोनों ही अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन तभी अनामिका थोड़ा तेज आवाज में बोली, लेकिन मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, तुम्हारी जान किसी और ने बचाई थी। एक पल के लिए ये सुनकर झलक चौंक गई, फिर बोली, कोई बात नहीं, अगर मेरी जान किसी और ने बचाई थी तो तुम मेरी तरफ से उसे धन्यवाद दे देना, लेकिन उसने मुझ पर बचकर कोई एहसान नहीं किया है, उल्टा मेरी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि मैं खुद इस जिंदगी को खत्म करना चाहती हूँ। झलक की ऐसी तैसी बातें सुनकर दादाजी थोड़ा तेज आवाज में बोले, बस करो बेटा, ये क्या फालतू उल्टी सीधी बातें कर रही हो, मेरी पोती होकर इस तरह की छोटी बातें कैसे कर सकती हो, अरे मेरी पोतियां शेर दिल होनी चाहिए, एकदम शेर दिल। अब झलक के माथे पर बल पड़ गए थे, तभी झलक बोली, देखिए जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो काइंडली मुझे जाने दीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये बोलकर झलक जैसे ही बाहर जाने लगी, तभी अनामिका ने पीछे से रोकते हुए कहा, क्या तुम एक बार भी ये जानना नहीं चाहोगी कि आखिर किसने तुम्हें बचाया था? एक पल के लिए झलक मुड़ी, बेरुखी से देखकर बोली, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने मुझे बचाया और क्यों, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और मुझे पता है कि मेरी मंजिल अब क्या है। कैसे लौटेगी झलक एक बार फिर अपनी जिंदगी की तरफ, जानने के लिए बनी रहिए दोस्तों।